जग को जीवन दान मिले, आए गम की न हवाएं, देते रहो दुआएं, नहीं अब गुण को मन में धरना है।
मीठे बाबा ने हम सभी बच्चों का अलौकिक श्रृंगार किया है, जिस श्रृंगार से श्रृंगारी हुई आप सभी ब्राह्मण आत्माएं बाबा का दर्शन कराने के लिए दर्शनीय मूरत बन करके बेहद की सेवाओं पर उपस्थित हैं। बाबा हम सभी को एक बहुत प्यारा और सुंदर टाइटल देते हैं कि आप सभी ब्राह्मण बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण मेरे नूरे रतन हो। इस कुल का श्रृंगार हम सभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण जीवन मिलते ही जो इस जीवन में दिव्यता आई है, पवित्रता आई है, हमारे बोल में जो मधुरता आई है, दृष्टि में जो रूहानियत आई है, ये हम सभी ब्राह्मणों के अलौकिक श्रृंगार हैं या अलंकार हैं। अलंकारी सजी हुई मूरत हम सभी मंदिरों के अंदर देखते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो सर्व अलंकारों से सजी हुई अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं। हमारे चित्रों में भी विष्णु का अलंकारिक चित्र हम सबके सामने है। और बाबा हमेशा जब अलंकारों की परिभाषा सुनाते हैं तो यही कहते, बच्चे ये अलंकार मेरे ब्राह्मण बच्चों के हैं, लेकिन ब्राह्मणों की अवस्था, उनकी स्टेज कभी बहुत ऊंची और कभी नीची होती, इसलिए स्थूल रूप में इन अलंकारों को ब्राह्मणों के आगे नहीं रखा जा सकता, ब्राह्मणों को नहीं दिया जा सकता। इसलिए हमारे संपूर्ण स्वरूप को विष्णु स्वरूप में सर्व अलंकार दिखाए गए हैं। तो हम सभी जब से बाबा के बच्चे बने हैं, ब्राह्मण जीवन अपनाई है, तो ब्राह्मण बनते ही विष्णुवंशी बाबा एक टाइटल देते हैं, वैष्णव बच्चे। तो वैष्णव आत्माएं जो हैं, जिनका नया जन्म हुआ, नए संस्कार, नए संकल्प और नए संबंध हो गए ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता, उसका सुखद अनुभव वही बाबा के बच्चे इस जीवन में करते हैं, जिनके अंदर संपूर्ण नवीनता आई है। अगर ब्राह्मण बनने के बाद भी, नया जन्म होने के बाद, मर्जीवा जन्म लेने के बाद वही पुराने संकल्प चलते रहते हैं, पुरानी आदतें बनी हुई हैं, उन्हीं आदतों के अनुसार संस्कार बन गए हैं, वैसे ही संबंध हैं, तो ब्राह्मण बनते हुए भी उस सुख का अनुभव, अलौकिक जीवन का अनुभव, जो स्टेज बाबा हम सब की देखना चाहते हैं, वर्णन करते हैं, उस स्टेज से हम सभी वंचित रह जाते हैं। जबकि बाबा की पढ़ाई एक ही है, शिक्षाएं एक जैसी मिल रही हैं, हम सबको पालना भी बाबा एक जैसी दे रहे हैं, फिर भी नंबर वार हमेशा बाबा याद प्यार में कहते हैं, नंबर वार बच्चे, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। और वो नंबर बनने का कारण इस ब्राह्मण जीवन में पुरानेपन की कितनी विस्मृति हुई है और नयापन कहाँ तक इस जीवन में आया है, हमारे संस्कार, संकल्प और संबंध कहाँ तक अलौकिक हुए हैं, उस आधार से हम नवीनता का अनुभव अगर करते हैं तो ये ब्राह्मण जीवन एक बहुत सुखदायी जीवन, जिसमें गाया हुआ है कि ब्राह्मण जीवन का अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जिनको भगवान पढ़ा रहे हैं, जिनकी पालना अव्यक्त रूप में अव्यक्त बाप दादा के द्वारा हो रही है, ऐसी ब्राह्मण आत्माएं कितनी महान हैं, कितनी अलौकिक हैं, कितनी श्रेष्ठ हैं। अगर उसकी श्रेष्ठता का वर्णन किया जाए तो कहते हैं कि देवताएं भी इस ब्राह्मण जीवन के लिए तरसते हैं। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ पार्ट इस कल्प के अंदर हम आप सभी अनुभव कर रहे हैं भगवान से डायरेक्ट मिलने का। इस बार लास्ट मुरली जो हम सभी सुन रहे थे 18 जनवरी को, बाबा ने एक बहुत सुंदर स्मृति दिलाई कि तुम्हारे सर्व संबंध डायरेक्ट वर्ड अथॉरिटी के साथ हैं, सिर्फ इस स्मृति में रहो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे, सर्व शक्तियां आपका श्रृंगार बन जाएंगी। तो जब आज मुझे विषय अचानक कहा गया कि ब्राह्मण जीवन के अलंकार इस पर आप क्लास कराना, तो मैंने कहा कि क्या होते हैं वो अलंकार, कभी ऐसा विषय पहली बार मैंने सुना और सोचा। वैसे तो बाबा की मुरलियां हम सबका श्रृंगार कर रही हैं, भिन्न भिन्न शिक्षाएं ही हमारा अलंकार बनी हुई हैं, और उन शिक्षाओं के अलंकार को अगर हम सभी अपने साथ रखते हैं तो ये अलंकारी मूरत अनेक आत्माओं को दर्शन कराने लगती है, दर्शनीय मूरत बन जाती है। इस वर्ष की मुरलियों में आप सब ने बाबा के महावाक्यों पर ध्यान दिया होगा। बाबा ने हम सबको एक अलौकिक दर्पण के रूप में दर्शनीय मूरत बनने की प्रेरणा दी है। इस मूरत से बाबा का साक्षात्कार हो, आपकी चलन से, आपकी बोल चाल और भाषा से, व्यवहार से बाप दिखाई दे, ब्रह्मा बाप का दर्शन कराने वाला ये आपका चेहरा हो। तो जब इस पर हम सभी चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो बाबा की मूरत हम सबके सामने आती है। आज तक भी भले इस क्लास में साकार को देखने वाले बहुत कम भाई बहने हैं, लेकिन अव्यक्त पार्ट में अव्यक्त पालना का अनुभव हम सब ने किया है। बाबा अपने बच्चों के बीच में 10-12 घंटे तक भी रहते हैं, कई बार शाम को आते और सुबह तक बच्चों की पालना, बच्चों का श्रृंगार करते हैं। आप सब ने अनुभव किया होगा या जो पहली बार आए हैं वो अनुभव करेंगे, बाबा का एक रस मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतनी बच्चों के साथ, इतने बच्चों की स्थिति जानते परखते, उन्हें प्यार पालना देते, शिक्षाओं से श्रृंगार करते, कभी भी बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट में 1% भी कमी नहीं दिखाई देती। मेरा तो 35 साल बाबा के साथ, करीब 32 साल का अनुभव है, पूरा समय अव्यक्त बाबा के साथ साथ व्यतीत हुआ है। एक घड़ी के लिए, एक सेकेंड के लिए भी कभी ये मुस्कुराहट चेहरे से चली गई हो किसी ने देखा नहीं होगा। बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए एक एक बच्चे का श्रृंगार करना, तो मेरा एक संकल्प आज चला कि वास्तव में ये हमारा एक बहुत सुंदर अलंकार है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिसमें किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार के किसी के गुण अवगुण नोट नहीं है। बहुत ऊंची नजर से बाबा अपने बच्चों को देखते हैं, एक एक बच्चे पर दृष्टि डालते, उनके पास्ट की कर्म कहानी को जानते हुए भी समा लेते, उस पर दृष्टि नहीं जाती, लेकिन ये मेरे बच्चे क्या बनने वाले हैं, इनका भविष्य पद कितना ऊंचा है, कितना महान है, और यही बने थे कलप कलप। ये एक स्मृति ऐसी है जो एक रस स्थिति बना देती है। तो बाबा ने जिस प्रकार हम सबकी पालना की है, जैसे बाबा को हम देख रहे हैं कि एक एक संकल्प में हर बच्चे को विशेष बनाने की भावना है, एक एक बोल में नाउम्मीद को उम्मीदवार बनाने की भावना है, ये एक अलौकिक श्रृंगार हम सबको दिखाई देता है। यही एक अलंकार हमारे आगे आते हैं कि बाबा के अलंकार ये हम सब के जीवन में आ जाएं। वैसे तो चारों अलंकारों की परिभाषा हम सब जानते और दूसरों को सुनाते हैं, शंख चक्र गदा और पद्म, ये जो विष्णु के अलंकार हैं, ये हमारे सब के, आप हम सब के अलंकार हैं संगम युग पर। लेकिन सिर्फ शंख ध्वनि करना, एक मुरली साकार बाबा की मैं पढ़ रहा था, बाबा ने साकार स्थूल सेवा करने वालों को एक बात कही कि बच्चे सिर्फ रोटी बनाना, सब्जी काटना, झाड़ू लगाना, क्या यही सेवा है? साकार के दिनों में बाबा अलौकिक सेवा की, ज्ञान सुनाने की सेवा की बहुत अधिक प्रशंसा करते थे। वो सेवा करते हुए भी बच्चों को दो बाप का परिचय हरेक को देना चाहिए। समय बदला, समय के अनुसार हम सब देख रहे हैं कि बाबा के सभी बच्चे जिनके मुख से ज्ञान रत्न निकलते हैं, हरेक के अंदर रहता है। जो हमने ज्ञान पाया है, सुना है, वो दूसरों को सुनाऊं। और एक से एक अच्छे प्रवीण हैं, अच्छी नई नई इन्वेंशन करके, अच्छी प्लानिंग करके, अच्छे अच्छे विधि से दूसरों को ज्ञान दान करते हैं। बहुत अच्छी सेवा की रिजल्ट ज्ञान दान करने में नंबर वन है। लेकिन वर्तमान समय अव्यक्त पालना में हम सब देख रहे हैं। इस बार एक मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, ये सेवा के साधन केवल बच्चों को बिजी रखने के लिए हैं। प्रत्यक्षता का आधार दूसरा है, और वो प्रत्यक्षता आपके अलौकिक बोल से, चलन से, आपके चेहरे से होगी, आपकी जीवन से होगी। इन मुरलियों पर जब हम थोड़ा नजर दौड़ाते हैं तो अपने अलंकार याद आते हैं। क्या हम सब ने शंख ध्वनि करना सीखा? लेकिन शंख ध्वनि के साथ साथ दूसरों को ज्ञान सुनाने के साथ साथ वो ज्ञान मेरे स्वरूप में कहाँ तक आया, उसकी लाइट और माइट कितनी आई है? एक एक बात जो ज्ञान की गहराई है, ज्ञान की गहन सब्जेक्ट हैं, उनकी लाइट और माइट से मैं आत्मा कहाँ तक संपन्न बनी हूँ। अगर मैं आत्मा का ज्ञान दूसरों को देती सुनाती हूँ, आत्मा का लेसन पढ़ाने वाले जिनको बाबा अभी भी पढ़ा रहा है, बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, अपनी कर्मेंद्रियों की, मन और बुद्धि की राज दरबार लगाओ। एक बहुत अभी तक ये सब्जेक्ट, जैसे कल या परसों वरदान में हम सुन रहे थे, पहला पाठ और लास्ट पाठ गीता का, जिस पाठ से पहले पाठ से अशरीरी बने और लास्ट पाठ से नष्टो मोहा बनेंगे, ये पाठ कहाँ तक स्मृति में आए हैं, या इनका हम स्वरूप कहाँ तक बने हैं, अशरीरी स्थिति का अनुभव कहाँ तक होता है? तो ज्ञान इस जीवन में, इस स्वरूप में आ जाए, फिर ये शंख ध्वनि हो, दूसरी आत्माओं को ज्ञान दान हम करें जिसका प्रभाव पड़े। ये अलंकार जो हम सबको बाबा ने दिया है शंख ध्वनि करने का, हम सबका पहला अलंकार है, जो हम दूसरों को कहते हैं, जैसी कथनी वैसी करनी। अगर उसी प्रमाण है तो उसका प्रभाव पड़ता है। स्वदर्शन चक्र, जिससे हम माया जीत बनते, व्यर्थ से मुक्त जो चक्र बना देता है, कभी स्वदर्शन चक्र स्व का दर्शन करते करते ये चक्र राइट की बजाय रांग की तरफ तो नहीं घूम जाता, व्यर्थ चिंतन या पर चिंतन में तो नहीं चले जाते, क्योंकि ये चक्र गला काटने वाला है माया का, विकारों का। अगर हम आत्मा को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, स्वयं का दर्शन करते हैं, अपने अनादि स्वरूप से लेकर के इस अंतिम पाठ तक अपने स्व को अच्छी तरह से निहारने वाले, स्वयं का दर्शन करने वाले व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये चक्र कहीं उल्टा तो नहीं चल जाता, इस अलंकार से मैं आत्मा कहाँ तक सजी हुई हूँ। पदम कमल जो न्यारे और प्यारे का प्रतीक है, हर आत्मा के साथ पाठ बजाते हुए, कर्म करते हुए, किसी के प्यार के प्रभाव में ना आ जाएं, किससे इतना न्यारे न बन जाएं जो न्यारापन वैराग्य दिलाने वाला हो, किनारा करा दे। इन दोनों का बैलेंस कहाँ तक रहता है? ज्ञान की गदा, शक्तियों की गदा विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। आपस में एक दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। हम सभी अगर इन सूक्ष्म अलंकारों से सदा सजे हुए हैं, इन अलंकारों को सदा साथ रखते हैं, इनकी शोभा किन बातों से होती है, ये अलंकार तो हम सब ने धारण कर लिए, लेकिन इनकी शोभा तब है जब ये जीवन सबसे पहले, अगर हम किसी मूर्ति को देखें जो सजी सजाई है, जो अलंकारों से सजी हुई होती है, उसका प्रभाव, उसकी शोभा लाइट से होती है। लाइट के बिना श्रृंगार शोभता नहीं है। ये सब श्रृंगार की शोभा हमारी लाइट स्थिति से है। अगर डबल लाइट स्थिति जो बाबा हम सब बच्चों की चाहता है, कितनी भी सेवाएं हों, कितनी भी जवाबदारियां हों, लेकिन एक लाइट है ज्योति स्वरूप स्थिति, आत्मा लाइट है, प्रकाश स्वरूप है, और दूसरी लाइट है हल्केपन की, बोझ नहीं है। बाबा ने इस बार एक बहुत सुंदर महावाक्य थोड़े से भाइयों के आगे उचारे थे कि ब्रह्मा बाबा की जितनी जवाबदारियां आप पर नहीं हैं, लेकिन सब जवाबदारियां संभालते हुए बाबा बहुत लाइट रहे। आप बच्चे भी जवाबदारियां कितनी भी हों, लेकिन कभी बोझ अपने ऊपर नहीं लेना, डबल लाइट स्थिति में रहना, ये श्रृंगार आपके कायम रहेंगे। तो डबल लाइट स्थिति और निरहंकारी स्थिति, अगर कोई भी अहंकार आ गया सेवा करते करते, तो अहंकार अलंकार हीन बना देगा। बाबा के शब्द बहुत सुंदर हैं, आप सभी अपने पास नोट रखना कि अगर कोई भी प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं, श्रृंगार हो रहा है हम सबका, हमारे पास ज्ञान अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, हर प्रकार की सब फैसिलिटी, सब प्राप्तियां हुई हैं, लेकिन अगर उन प्राप्तियों का, उन सेवाओं का थोड़ा भी अहंकार आ गया, तो अहंकार सर्व प्राप्तियों को समाप्त कर देगा, क्योंकि देने वाला दाता है, उसको भूल जाएंगे। तो हम सभी सदा अलंकार से सजे रहें, इसलिए एक डबल लाइट स्थिति, दूसरी निरहंकारी स्थिति, और तीसरी सदा संतुष्टता हमारे चेहरे से दिखाई दे कि ये संतुष्ट प्रसन्न चित आत्मा है। ये इस वर्ष का होमवर्क है, बाबा ने सभी बच्चों को ये होमवर्क दिया है, सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। कुछ भी हो जाए, इस संतुष्टता के खजाने को गंवाना नहीं। ये भी एक बहुत सुंदर हमारे श्रृंगार को दिखाने वाला दर्पण बन जाएगा। अगर संतुष्ट नहीं है तो ज्ञान का श्रृंगार, गुणों का श्रृंगार, शक्तियों का श्रृंगार दूसरों को साक्षात्कार नहीं कराएगा। इसलिए संतुष्टता का गुण हरेक ने कहाँ तक अपने जीवन में उतारा है, सेवाएं करते, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते, एक लक्ष्य बना लें कि खुद भी संतुष्ट रहना है और सर्व आत्माओं को संतुष्ट करना है। सेवाओं के क्षेत्र में अगर बाबा का एक शब्द, जो बाबा कई बार यूज करते हैं साकार मुरलियों में, खीर खंड होकर के रहो, जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, ऐसे खीर खंड होकर के रहना। आज मैं मीटिंग में कह रहा था, ग्राम विकास की मीटिंग में, कि सेवाओं की सफलता की दो भुजाएं हैं, और अगर वो दो भुजाएं हम सब अपने साथ रखते हैं, तो सेवाओं में हम एक नहीं कई गुना सफलता प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं, और वो है एकता, जिसका आधार है खीर खंड होकर के रहना, एक दूसरे से बहुत प्यार और प्रेम से एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे करके, सम्मान दे करके, मिलनसार बन करके रहना, एकता का आधार बन जाता है। तो एकता और एकाग्रता, ये दो बाबा कहते सेवा की सफलता के हाथ हैं, और इन्हीं दो के आधार से आप हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। ये हमारे श्रृंगार हैं, अलौकिकता के अलौकिक जीवन के अलंकार हैं। तो खीरखंड स्थिति कहाँ तक रहती है, ये अलंकार गिरते कैसे हैं, कभी कोई अलंकार रहता कभी कोई, इस पर थोड़ा सा हमने विचार किया तो एक संकल्प आया कि अलंकार को खत्म करने वाली एक बहुत सूक्ष्म बात है, अगर उस पर ध्यान दिया जाए। एक दिन मैं एक स्लोगन पढ़ रहा था और वो बहुत इतना अच्छा स्लोगन मुझे लगा, सक का सक सक शब्द माना समा सक के जिसको बाबा कहते हैं अनुमान संशय, सक की समाप्ति के बाद ही शांति का प्रारंभ होता है, शक की समाप्ति के बाद ही शांति का प्रारंभ होता है। अगर कोई अपने जीवन में शांति का श्रृंगार करना चाहता है, शांत रहना चाहता है, शांति का दान देना चाहता है, शांति की गहन अनुभूति करना चाहता है, तो शक का संस्कार, शक करने का संस्कार, अपने आप पर शक। कई बार हम लोग सोच लेते हैं पता नहीं ये व्यक्ति मुझे किस नजर से देखता है, अंदर शक होता है कि हमारे बारे में ही तो नहीं बातें करता, ये मेरे बारे में ही तो नहीं सोच रहा है, या हम भी अपने आप पर शक करते हैं, पता नहीं बाबा तो कहता है लेकिन मैं बनूंगा या नहीं, बन सकता हूँ या नहीं, मैं कर सकता हूँ या नहीं। इससे सिद्ध होता है हमारे विश्वास की कमी। तो ये सबसे ऊंचे श्रृंगार को समाप्त करने वाला शक का संस्कार है जो बाबा ने हमारे अलंकार दिए हैं। अगर कोई शक की दृष्टि से अपने आप को भी देखता है, दूसरों पर भी शक की दृष्टि से रखता है, देखता है कि ऐसा ही पता नहीं कहता तो है लेकिन इसके जीवन में है या नहीं, ये बहने इतनी ऊंची बातें तो करती हैं लेकिन इनकी जीवन ऐसी है या नहीं, शक की दृष्टि से कई लोग पहले पहले आते हैं और वो दृष्टि एक बहुत नुकसानकारक है, शांति का प्रारंभ ही नहीं होता, अपने शांत स्वरूप स्थिति में आत्मा पहले स्थित ही नहीं हो पाती, क्योंकि शक का संस्कार बहुत अंदर का कड़ा संस्कार है, और अगर इस संस्कार पर हमने जीत विजय नहीं प्राप्त की तो बाबा का एक शब्द साधारण शब्दों में ही आता है, संशय बुद्धि बिन सयंती, शक माना संशय, और अगर शक है संशय है अपने आप पर भी तो भी विनाश को प्राप्त होंगे। इसलिए ऐसे ऐसे बाबा के शब्द याद रखें तो ये अलंकार हमारे सदा कायम रह सकते हैं। दूसरी एक बात ध्यान पर आई, अहंकार जैसे अलंकारहीन बनाता, ऐसे ही अगर कोई भी व्यक्ति में ईर्ष्या का सूक्ष्म संस्कार है, क्रोध को हम सब जीत लेते हैं लेकिन ईर्ष्या का एक स्लोगन हम कभी कभी अपने भारत में चलने वाले ट्रकों के पीछे देखते हैं, लिखा होता है कि व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी होता है, दूसरे के सुख को देख करके अधिक दुखी होता है, दूसरे के सुख में अधिक दुखी हो जाता है। कई बार हम दूसरों के पास क्या है, इसके पास इतना है मेरे पास नहीं है, अपने आप को नहीं देखते लेकिन दूसरों को देख देख करके जलते रहते हैं, और बाबा ने इस पर बहुत गहरी शिक्षाएं दी हैं कि ईर्ष्या एक काली अग्नि है और ये काली अग्नि अंदर ही अंदर जलाती है। हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर आत्मा की अपनी विशेषता है, हर आत्मा का अपना भाग्य है, हम किसी से भेंट नहीं कर सकते, हर एक की विशेषताएं अपनी हैं, हर एक की बुद्धि अपनी है, हर एक के कर्म अपने हैं, और अगर हम किसी से भेंट करते हैं तो कभी भी संतुष्ट और सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। अलंकार सहज हर अलंकार को समाप्त करने वाली ईर्ष्या की आग है। चाहे जितना भी बाबा ने हम सबका श्रृंगार किया, अलंकार दिए हैं, लेकिन ईर्ष्यालु कभी भी उसके सुख का अनुभव नहीं कर सकता, चेहरे पर उसके अलंकार दिखाई नहीं देगा। तो हम सभी अगर इन छोटी छोटी सूक्ष्म शिक्षाओं को बाबा की स्मृति में रखते हैं तो ये अलंकार हमारे सदा के लिए कायम रह सकते हैं, क्योंकि अलंकारी हुई मूर्ति ही सबको अच्छी लगती है। अभी भी जो पर्दा नहीं खुल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने में जो देरी है, इतनी सेवाएं हो रही हैं, इतनी वृद्धि हो गई सेवाओं की, इतनी आत्माओं तक हम डायरेक्ट पहुंच चुके हैं, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हजारों करोड़ों आत्माओं तक संदेश बाबा का पहुंचा है। लेकिन आज तक बाबा का ये शब्द कि यही हैं, यही हैं, यही हैं, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। सब भेंट करते हैं, जैसे ये हैं ऐसे ये हैं, और कई बार कह देते हैं कि अभी तो यहाँ भी ऐसा होता है जैसे दूसरी संस्थाओं में होता। अगर इस प्रकार से ही भेंट चलती रही तो बाबा का नाम जो इतनी हम सब ने पालना ली है, जो इतनी ऊंची जीवन हम सबकी बनी है, आखिर भी प्रत्यक्षता कैसे होगी। एक हंसी की बात मैं सुनाता हूँ। एक भाई ने मुझसे अचानक पूछा कि भाई साहब, बाबा कहता है मैंने तुम्हें इतनी प्राप्तियां कराई हैं, मुझे तो लगता नहीं क्या प्राप्ति हुई है, क्या प्राप्तियां हुई हैं। तो मैंने कहा, सचमुच कभी आपने सोचा ही नहीं कि मुझे क्या प्राप्तियां हुई हैं। इतनी श्रेष्ठ जीवन जो बाबा ने दी है, जिसमें दिव्य बुद्धि है, जिसमें अच्छे विचार हैं, अच्छे संस्कार हैं, जिनका बोल चाल अच्छा सात्विक है, खान पान इतना शुद्ध बन गया है, व्यवहार इतना अच्छा बन गया, फिर भी कहते क्या प्राप्तियां हुई हैं। आज अगर ज्ञान नहीं होता तो क्या हाल होता आपका। ज्ञान ही इतनी सुंदर पालना हम सबकी कर रहा है, बाबा की शिक्षाएं ही इतनी प्राप्तियां करा रही हैं। अगर हम सभी बाबा के ज्ञान को, शिक्षाओं को अमल में लाते हैं, उन पर चिंतन करते हैं, तो क्या नहीं हम सबको बाबा ने दिया है। खुशियों का खजाना है, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है। एक एक खजाने पर हम सब अपनी नजर दौड़ाएं तो सर्व खजानों से बाबा ने एक एक बच्चे को माला माल बनाया है। रोज भी रोज दे रहा है, ऐसा नहीं एक दिन दिया दूसरे दिन नहीं। बाबा की मुरलियों में रोज नया खजाना, रोज नया मार्गदर्शन मिलता है। ऐसा भी कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ रोज ही नई ढंग से पढ़ाई और नई शिक्षाएं हम सबको मिलती हों, किसी को भी मिलती हों। तो इतनी सुंदर मार्गदर्शना, इतनी श्रेष्ठ श्रीमत, जिसके आधार से आधा कल्प तो किसी की मत और राय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इस समय हम श्रेष्ठ श्रीमत पर चल रहे हैं, श्रीमत को हम समझ रहे हैं कि बाबा ने कितनी ऊंची मत दी है, स्वच्छ रहना सिखाया, सद्बुद्धि दी, सद्विवेक दिया, दिव्य दृष्टि दे दी, इससे बड़ी प्राप्तियां और क्या होंगी। अपनी प्राप्तियों पर नजर दौड़ाएं और यही अपना श्रृंगार बना लें। इसी से हमारी श्रृंगारी मूर्त दिखाई देगी, कितनी प्राप्तियों से संपन्न है, अतृप्त नहीं है हम। अगर अतृप्त हैं तो ईर्ष्या हो सकती है, किसी से भेंट हो सकती है। हर एक का अपना भाग्य है। एक कहावत, एक गीत में हमारे शब्द आते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसको क्या प्राप्त हो सकता है। तो हम सबको बाबा ने जो प्राप्ति कराई है, मैं तो कहता हूँ भाग्य से भी ज्यादा है और समय से भी ज्यादा है। इतनी प्राप्तियां बाबा ने करा दी हैं, कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भाग्य होगा, इतना बड़ा परिवार मिलेगा, इतना बाबा डायरेक्ट आकर के हम सबको सकाश देगा, शक्तियां देगा, पढ़ाएगा, एक एक बच्चे को बच्चे बच्चे कहकर के बात करेगा। भक्ति में तो हम सब सुनते थे, समझते थे, शायद कई जन्म लेने पड़ेंगे भगवान का दर्शन करने के लिए, और हम तो डायरेक्ट उनसे बातें करते हैं, उनसे मिलन मनाते हैं, उनसे एक एक बात की राय ले रहे हैं, एक एक श्रीमत ले रहे, कदम कदम के लिए श्रीमत मिल रही। तो इतनी सब प्राप्तियां क्या हम सब का श्रृंगार नहीं है। अगर हम इसको श्रेष्ठ चिंतन के रूप में सुमिरन कर लेते हैं, अपनी स्मृति में ले आते हैं, तो हम समझते हैं कि ऐसी अलौकिक जीवन नशे की जो हम सबकी होनी चाहिए। अगर हम सभी ऊंचे नशे में रहना सीख लें, श्रेष्ठ पोजीशन पर स्थित रहना सीख लें, तो ये श्रेष्ठ पोजीशन, ऊंची स्थिति छोटी छोटी बातों को सहज ही समाप्त कर देगी। विघ्न भले भी कितने आए, क्योंकि अगर कहीं पर भी कोई मर्यादा का उल्लंघन होता है, कहीं पर भी कोई मर्यादाओं का ठीक रीति से पालन नहीं होता, तो आज ये कोई छोटी संस्था नहीं, एक व्यक्ति का नाम बदनाम नहीं होता, लेकिन सारे परिवार पर नजर लोगों की जाती है। इसलिए हम सब की बहुत बड़ी जवाबदारियां भी हैं। इसके साथ साथ जितना ऊंचा भाग्य है, जितनी ऊंची पालना है, उतनी बड़ी हम सब की जवाबदारियां भी हैं कि हमारा कोई भी ऐसा कर्म न हो, ऐसी कोई एक्शन न हो, ऐसी कोई एक्टिविटी न हो जिसमें साधारणता है, जो दुनिया कर रही है वो हम नहीं कर सकते हैं, उसमें दिव्यता है, अलौकिकता है। तो ये हमारी मूर्ति बाबा के ज्ञान को और बाबा को अपने आप प्रत्यक्ष करेगी। हमारी चलन और हमारा चेहरा, हमारा व्यवहार और हमारा चिंतन, मैं समझता हूँ ये बाबा का दर्शन कराने वाला हो जाएगा। तो हम सभी बाबा की बताई हुई सूक्ष्म मर्यादाओं को, उनकी श्रीमत को अगर श्रेष्ठ रीति से समझ करके पालन करते हैं। आज दादी जी का एक संकल्प बार बार आ रहा था, मुझे कहा अभी अभी लिख करके ले आओ कि मेरा संकल्प चलता है कि भारत बहुत महान तीर्थ है और इस भारत महान तीर्थ से व्यसन समाप्त हो जाने चाहिए। इतना बड़ा संकल्प, ये सारा संसार जो व्यसनों का गुलाम बन गया है, जो अशुद्ध अन्न खा रहे हैं उनसे मुक्त हो जाएं, कितनी शुभ प्रेरणाएं हैं, कितने शुभ संकल्प हैं। हम सब का प्रयास है, पहले तो हम सबको बाबा ने इन सबसे मुक्त किया है। हर एक बाबा का बच्चा जो भी इस सभा में आता है, हर एक व्यसनों से, अशुद्ध अन्न से मुक्त तो है ही। है कोई ऐसा जो अभी भी अशुद्ध अन्न का प्रयोग कर लेता हो, लहसुन प्याज भी खाता हो? इस सभा में तो नहीं होगा, है कोई ऐसा? हम सभी बाबा के पक्के वैष्णव बच्चे हैं, और वैष्णव माना अशुद्धता का संपूर्ण त्याग, तमो प्रधानता का संपूर्ण त्याग, सच्चे वैष्णव बनकर के, अलंकारधारी बनकर के हम बाबा को प्रत्यक्ष करें, बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करें, यही बाबा की श्रेष्ठ आस है। तो आप सभी दादी जी के संकल्प को, बाबा के संकल्प को पूरा करने का संकल्प लेकर के, दृढ़ता से लेकर के यहाँ से जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक एक की सूरत से, एक एक की चलन से दिखाई देगा कि सचमुच ये अलौकिक लोग हैं। जब ब्राह्मण शब्द मैं कहता हूँ, ब्राह्मण माना जाति की बात नहीं है, लेकिन एकदम शूद्रपन समाप्त हो जाए, जो लौकिकता थी, शूद्र माना जाति की बात नहीं है, लेकिन जो साधारणता है, लौकिकता है, कभी कभी साधारण भाषा में बोल देते हैं ये फलानी जाति का है, फलाने धर्म का है, फलाने कुल का है, बाबा ने उन सब से हम सब को न्यारा बनाया है, निकाल लिया है, जाति भेद, रंग भेद, भाषा भेद, इन सब से मुक्त करके अलौकिक ब्राह्मण मुख वंशावली बनाया है। तो हम सभी ब्रह्मा की मुख की संतान कौन है? ब्राह्मण कुल भूषण, बाबा के नूरे रतन, बाबा के नूर में बसने वाले। हम सब की नूर में बाबा बसता, नूर जो दो आंखों के बीच में बहुत महीन बिंदु दिखाई देती है जिससे हम सब देखते हैं। हम सभी बाबा के नूर में बसे और बाबा इन नैनों में बस जाए, बस यही आस है। तो हम सभी बाबा को अपने नैनों में बसाकर श्रृंगारी मूरत, अलंकारी मूरत बन जाएं, तो बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। ओम शांति।